Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shankara Bhagavat Pad Virachita Dashashloki. Acharya Shankar Ke Dwara Nirmit Yah Dashashlok, जो दशश्लोकी नाम से प्रसिद्ध है, इसी के ऊपर मधुसूदन सरस्वती जी के टीका है, सिद्धांत बिंदु, पूरा वेदांत का निचोड़ है इसमें। कहने के लिए संक्षिप्त है लेकिन विस्तार ही है, लेकिन ब्रह्मसूत्र आदि की दृष्टि से बहुत ही संक्षिप्त है। आत्मा और अनात्मा, इन दोनों के मिल जाने से, इसके विवेक न होने से, जैसे कि बताया पहले ब्रह्मसूत्र में आता है, भेदाग्रह निबंधन भ्रम, भेद के अग्रहण ही भ्रम का कारण है। आत्मा और अनात्मा अत्यंत अलग अलग है, फिर भी उसके अलग पने का हमें अग्रहण है, अर्थात ज्ञान नहीं है। अग्रह का वहां अर्थ लेना है अज्ञान, भेद का ज्ञान नहीं है, इसीलिए भ्रम होता है। अभी ये भूमिका बना रहे प्रथम श्लोक का यह अवतरण है, शास्त्र की प्रयोजन क्यों है, किसके लिए है, हम लोगों को क्यों स्वाध्याय आदि करना चाहिए, उसके लिए पहले हमें अज्ञान के स्वरूप को जानना होगा, फिर उसको हटाने के लिए प्रयास करेंगे। तो कह दिया इदंकारास्पद और अहंकारास्पद। अहंकारास्पद का अधिष्ठान समझ लो हमारा अपना शरीर, और इदंकारास्पद के रूप में ये पूरा जगत, उसका निरंकार के अधिष्ठान है जगत, और अहंकार के आश्रय अर्थात आस्पद जो है शरीर। तेना ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम व्यर्थम इति चेत। बोलते हैं तो लोक में जब सबको मालूम ही है, सुस्पष्ट है, दोनों अलग अलग है, अंधकार और प्रकाश कभी एक नहीं हो सकते, फिर ये आत्मा और अनात्मा भला कैसे एक हो गए। बोले यही तो हम भी कह रहे हैं, कैसे हो गए, जबकि होना नहीं चाहिए। और अभी हम लोग बोल क्या रहे हैं, मिला करके ही तो बोल रहे हैं। वेदांत पढ़ने के बाद भी बोलोगे तो ऐसे ही, लेकिन आंतरिक वृत्ति बन जाएगी कि उपाधि के द्वारा ये सारे व्यवहार हो रहे हैं। पारमार्थिक जो आत्म तत्व है उसका किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है। मोटी सी बात याद रखने की है, जिसके बिना किसी का व्यवहार न चलता हो, लेकिन जिसका किसी के साथ व्यवहार न होता हो, उसको कहते हैं आत्मा। याद रहेगा, सवेरे सवेरे आप लोग समाधि में मत जाना। हाँ, जिसका किसी के साथ व्यवहार न हो, लेकिन जिसके बिना कोई व्यवहार न हो, वह है आत्मा। अब देख लीजिए, जिसके बिना कोई व्यवहार न हो और जिसका किसी के साथ व्यवहार न हो, कोई व्यक्ति गुजर जाए, चेतन से वियुक्त हो जाए, अलग हो जाए, वह संसार के किसी काम का रहेगा नहीं। लेकिन इस समय जब हम लोगों का व्यवहार चल रहा है तो उसके बिना चल रहा है क्या? जब नहीं रहता है तो कोई व्यवहार नहीं चलता, और उसी के रहने पर व्यवहार चलता है, लेकिन उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्रह्म आदि के जब लक्षण करते हैं तब भी यही बोलते, जो बृहत हो, बड़ा हो, और बृहत्वात्, और दूसरा लक्षण किया ब्रिंगणत्वात्, वह जो ब्रह्म है आत्मा उपब्रिंगित है और बृहत बड़ा व्यापक है। देश काल वस्तु आदि से जो अपरिच्छिन्न हो उसी को व्यापक कहते हैं। केवल काल से अपरिच्छिन्न हो तब तो नित्य हो जाएगा, जो कल आप लोगों ने सुना। ऐसे ब्रह्म से उपब्रिंगित हैं हम लोग, और उस समाज के अंदर जो जुड़े हुए जितने भी जीवित व्यक्ति है, जब प्राण निकल गया, क्योंकि प्राण भी एक आत्मा का ही प्रतीक है, प्राणस तथानुगमात अतएव प्राण, ये सब ब्रह्म सूत्र में आता है। प्राण अपने आप में जड़ है, लेकिन प्राण जो प्राणन क्रिया करता है वह जिसकी सत्ता से वही आत्मा है। यत प्राणेन येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद में सबका निषेध भी किया और उसी के माध्यम से आत्मा को जानने के लिए भी कहा। तो जिसका किसी के साथ व्यवहार नहीं होता, और ऐसा नहीं कि आत्मा का व्यवहार नहीं, बल्कि आत्मा को जानने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, अव्यवहारिक होता है। होता है कि नहीं? कांदीवली वाले महाराज जी थे, वो यही बोलते थे कि मेरे से आप लोग व्यवहार की अपेक्षा मत करना। व्यवहार किसको बोलते हैं, तो ये भी याद रख लो, व्यवहारो नाम भ्रांति। व्यवहार किसका नाम है? भ्रम को ही व्यवहार बोलते हैं। नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? जीते जी तो हम लोग औपचारिकता में जीवन बिताते ही हैं, अपितु मरने के बाद भी हम व्यवहार की चिंता करते हैं। हम ये क्या सोचते हैं कि किसी के मरने पर यदि हम नहीं जाएंगे तो जब मैं मरूंगा तो कोई नहीं आएगा। अब जो व्यक्ति केदारनाथ के उस आपदा में काल कवलित हुए, वे लोग भी तो कभी किसी के मौत की यात्रा में गए होंगे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके यात्रा में कौन लोग थे? तो क्या वहां आप मौत को रोकोगे, रुक जाओ, जिन लोगों के मौत में हमने साथ दिया उनको जरा आ जाने दो तब मुझे ले जाना? इसलिए व्यवहारो नाम भ्रांति। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं या करनी है, अभी कर तो नहीं रहा हूं, करनी है, और दूसरे के बेटी की शादी में नहीं जाएंगे तो लोग हमारे यहां भी नहीं आएंगे। और ये हम वेदांतियों की थोड़ी चालाकी है, आप लोगों को बता देता हूं, शायद जानते हैं आप। बोलते हैं महाराज, अब तो जब से हमने सत्संग शुरू किया है ना, तब से मन में वैराग्य आ गया। क्या वैराग्य आया? किसी से मिलना, किसी के वहां आना जाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो तो आपका मन जानता होगा। जहां जहां फायदे का सौदा हो वहां तो हम बोलते हैं क्या करें जी, करना पड़ता है, और जहां घाटे का सौदा हो तो वहां आप बोलो हम वेदांत पढ़ते हैं, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं देता, इसलिए अब हमको वैराग्य हो गया। ऐसा वेदांती बनोगे क्या? जहां फायदा हो वहां तो जाओ, और जहां घाटा हो, नासिक कुंभ जाओगे, ट्रैफिक में गाड़ी फंसेगी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, बहुत कष्ट होगा, तो आप कहोगे हमने तो बृहदारण्यक का मंत्र पढ़ लिया है, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने उदाहरण दिया है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरित। अब तो इस शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। कौन जावे नासिक कुंभ में नहाने के लिए, ट्रैफिक में फंसने के लिए? लेकिन कहे कि आपको अमुक जगह जाने पर 1 करोड़ का फायदा होने वाला है, उस समय आप बृहदारण्यक का मंत्र बोलोगे या चुपके से चले जाओगे? उस समय वो बृहदारण्यक का मंत्र याद नहीं आएगा, बोले ये तो जरूरी है, थोड़ा करना पड़ता है। तो ऐसा हमें आत्मज्ञानी नहीं बनना। जब वह आत्मा में स्थित होता है, स्थित प्रज्ञा आदि के जो लक्षण बताए शास्त्रों में, तदनुसार लाभ और हानि के बुद्धि से जो परे हो जाए, लाभ क्या है और हानि क्या है, इस तरह इत्याकारक वृत्ति से ऊपर उठ जाना ही अपने स्वरूप में स्थिति है। समझ में आ गया ना? किसी के मिलने पर मुंह उतारने की जरूरत नहीं है और किसी के मुंह मिलने पर मुंह को मतलब हंसने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या होते हैं, आप गीता में पढ़ते हो जब वक्त का लक्षण है ना, वहां अध्येष्टा सर्वभूतानाम, तो उसमें आता है हर्षा हर्ष भयोद्वेग, हर्ष और अहर्ष दोनों आ जाता है ना। हर्षामर्ष है कि हर्षा हर्ष है? हर्षामर्ष, हर्षा हर्ष। अरे कल बारहवें अध्याय का पाठ नहीं किया? हर्षामर्ष भयोद्वेग, हर्ष और आमर्ष, इन सब से जो ऊपर उठ गए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। अभी अनुकूलता के प्राप्ति होने पर हम हर्षित होते हैं, प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर द्वेष होता है, तो इसमें भला हम कैसे आत्मा में स्थित हो सकते हैं? आत्मा में तो ये सब होना नहीं चाहिए और अभी हो रहा है, तो इसीलिए उसी का विचार चल रहा है। आत्मानम चेद बिजानीयात, आत्मा को जान लेने के बाद कि अयम अस्मि मतलब अहम ब्रह्मास्मि, पुरुषः किम इच्छन किसकी इच्छा करता हुआ और किसकी कामना करके, कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत, वो तीनों शरीर ले लो, इन सब में जो अनुसंज्वरण जो ताप है जो कष्ट है उसके लिए हम क्यों भला प्रयास करें। लेकिन अभी ये अज्ञान रूपी भूत जो लगा है, जिससे छूटे बिना बार बार वेदांत श्रवण करने पर भी जब जब प्रवचन सुनते हैं स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय तो पक्का हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जल के ऊपर शैवाल की तरह हाथ से हटाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। जब तक यह दृढ़ नहीं होगा तब तक बार बार वेदांत श्रवण कीजिए, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्योपत्ति मत्वा च सततम ध्येयम एते दर्शन हेतव। यदि आत्मदर्शन के हेतु कारण है तो ये तीन चीजें श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण करें तो किसका? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो, श्रुति वाक्यों को सुनना, यही श्रवण है। हालांकि केवल शब्द मात्र सुनने का नाम श्रवण रखेंगे तो गाड़ी की आवाज आदि सुनाई दे रही है वह भी श्रवण होने लग जाएगा। तो जहां पर वेदांत के द्वारा परमात्मा के अभिप्राय का निश्चय हो उसी को वास्तव में श्रवण बोलते हैं, और तदनुरूप मनन हो और तदनुरूप निधिध्यासन हो तब जाकर के आत्मा का दर्शन होता है। तेना ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम व्यर्थम इति चेत्। आत्मतत्व के प्रतिपादन करने की जरूरत क्या है? तो आत्मानम का अर्थ किया है यहां पर न्याय रत्नावली कारण, आत्मा का मतलब होता है अनात्मनाम अधिष्ठान स्वरूप भूतम। आत्मा क्या है? अनात्माओं का अधिष्ठान है, जितने भी अनात्म पदार्थ हैं सब उस आत्म सत्ता में ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। अब वह जो आत्मा, उदाहरण दे दिया कि महाराज जी बोलते हैं कि मेरे से व्यवहार की अपेक्षा नहीं करना, अदृष्टम अव्यवहार्यम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, मांडूक उपनिषद में भी उसको क्या कह दिया, अव्यवहार्य। तो जो कुछ भी व्यवहार की कोटि में आते हैं वे सब के सब अनात्मा है, ब्रह्म है, व्यवहारो नाम भ्रांति। ये पंक्ति याद रख लेना। समस्या ये आती है कि हम जब वेदांत को भी व्यवहार में ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता करके अलग अलग कर दिया। व्यवहार होगा भेद पूर्वक और परमार्थ किसका नाम है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। जहां पर अभेद की स्थिति हो जाए वो तो परमार्थ है, और व्यवहार में क्या रहेगा? भेद तो बना ही रहेगा। गुरु भी होंगे, शिष्य भी होंगे, एक ऊपर बैठेगा एक नीचे बैठेगा। परमार्थ में तो मौन धारण कर लो, और व्यवहार में बोलना भी पड़ेगा, बोलेंगे तो सुनने वाला भी कोई चाहिए। ये सब के सब व्यवहारिक पक्ष में आ जाते हैं। और व्यवहार में जब दृढ़ता है तो एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को बताता हूं, सुनते हो आप लोग। एक होता है बिगड़ा हुआ रूप, एक होता है सुधरा हुआ रूप, और एक ऐसा है कि पूरा बिगड़ा भी नहीं है, पूरा तीन रूप हैं। वो क्या क्या है? एक होते हैं अज्ञ, वो है बिगड़ा हुआ रूप। एक होते हैं विज्ञ, वो हो गया सुधरा हुआ रूप। विशेषेण जानाति विज्ञ, शास्त्र श्रवण करके, शास्त्र अध्ययन करके जिन्होंने अर्थ के रूप में परमात्मा को जान लिया उनका नाम है विज्ञ। और जिसको अभी शास्त्र क्या चीज है, छोटा बालक ले लो, उसको क्या मालूम तत्वबोध आत्मबोध क्या है? वो है सर्वथा अज्ञ। न जानाति इति अज्ञ, विशेषे न जानाति इति विज्ञ। एक है सुधरा हुआ और एक है बिगड़ा हुआ। एक को सुधारने की जरूरत नहीं और एक में सुधारने की संभावना ही खत्म हो गई। अब अपने लोगों की बात कर लो, हम लोग क्या हैं? ना तो पूरे सुधरे हैं और ना ही पूरे बिगड़े तो नहीं है ना, इसका मतलब थोड़ा तो बिगड़े हुए हैं। जब कोई चीज बिगड़ने लग जाए या ये चीज बिगड़ रही है तो जरूर उसको हम संभालने की कोशिश करते हैं या करनी चाहिए। बाहर वाले की तो बात छोड़ दीजिए, अब यहां हम अभी जितने लोग बैठे उतनी की बात करते हैं। कोयला काला है, उसको सफेद नहीं किया जा सकता। सफेद कंबल है, उसको सफेद करने की जरूरत नहीं है कि जरूरत है? उस पहले से सफेद है और वो इतना काला है कि उसमें सफेद होने की संभावना नहीं है। तो अज्ञ विज्ञ ये तो एकदम दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग आ गए, तभी आपने कह दिया कि हम लोग पूरे सुधरे नहीं है, सुधरे हुए नहीं, इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कुछ बिगड़े हुए ये पता लग गया। अब हम लोगों को बिगाड़ने वाला किसकी वजह से बिगड़े हैं? जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जिस तरह से हम जानते हैं वो अज्ञान ही है। जब यस्या मतम तस्य मतम कहते हैं ना, तो यस्या मतम का वहां अर्थ क्या है? कहा जो नहीं जानता है तस्य मतम। जरा ध्यान दीजिए, यस्या मतम का मतलब यस्य अमतम, जिस जो बोलता है कि नहीं जानता हूं तो उसके लिए कहा वो जानता है, और मतम यस्य, और जो बोलते हैं कि जानता हूं वो नहीं जानता है। अब ये कैसे हो सकता है? जो नहीं जानता है वो जानता है और जो जानता है वो नहीं जानता है। तो केनो परिषद आप पढ़े होंगे तो भाष्यकार ने सुस्पष्ट कर दिया कि जो उस अप्रमेय को प्रमेय मानते हैं यही उनका नहीं जानना। आत्मा कैसा है? परमात्मा अप्रमेय है, और आप क्या बोलते हो कि वह प्रमेय है, तो ये आपका जानना नहीं जानना है। और जो उस अप्रमेय को बोलते कि मैं प्रमेय के रूप में नहीं जानता, वो जानते हैं। याद रखोगे, फिर दो दिन में पूछूंगा, अभी एक हफ्ता हूं मैं आपके सिर पे बैठा हुआ रहूंगा। आप ये मत समझ लेना कि आज का मामला निपट गया तो हो गया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न बेदस। इसमें कई बार उल्टा लगता था कि कैसे बोलते हैं कि जानने वाला नहीं जानता और नहीं जानने वाला जानता है। तो जो जो वेदांत पढ़ते सब बोलते कि मैं जानता हूं, इसका मतलब सबका पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। और नहीं जानने वाला जानता है तो बाहर जो एक सामान्य व्यक्ति वो भी कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, तो उसमें ज्ञानी की अति व्याप्ति हो जाएगी। जानने वाले में अब व्याप्ति हो रही है और नहीं जानने वाले में अति व्याप्ति हो रही है। तो वहां पर ये ध्यान रखना है। इसे तो भाष्यादि पढ़ते हैं, श्रवण करते हो आप महापुरुषों से, तब मालूम पड़ता है कि प्रमेय के रूप में जो उस अप्रमेय को जानता है बोलता है, वो नहीं जानता है। अप्रमेय को प्रमेय बनाने की कोशिश मत करो। और अप्रमेय को अप्रमेय के रूप में जानते हो तो जानते हो, तो इसलिए वो बोलते हैं हम उसको प्रमेय के रूप में नहीं जानते, इसलिए वो जानता है। आज मुझे लगता है आप लोगों को जोर पड़ रहा है कुछ। श्रावण का सोमवार, बाबुलनाथ भगवान के दर्शन करके आए हो तो जल्दी समझ में आएगा, और नहीं अभी आ रहा है तो जाके दर्शन कर लेना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। अब देखो यहां अभी बता दिया, एक है अज्ञ और दूसरे हैं विज्ञ। हम लोग कहलाते हैं अल्पज्ञ, जानते भी हैं लेकिन थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते अभी। अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ, विशेषेण जानाति विज्ञ, न किंचित जानाति इति अज्ञ, और अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। थोड़ा जानने से काम चलेगा या पूरा जानने से काम चलेगा? तो प्रकर्षेण अज्ञ प्राज्ञ, गहरी नींद में जब गए तो क्या बन गए हम? प्राज्ञ। और वही प्राज्ञ बन जाता है सर्वज्ञ। जब सर्वरूप आत्मा को जानते तो उसका नाम क्या पड़ता है? सर्वज्ञ। उससे पहले इन तीन अवस्थाओं में हम गुजरते रहते हैं, विश्व तेजस और प्राज्ञ। इसलिए तो कह दिया न जागरण न में स्वप्न को वा सुसुप्तिर, न विश्व न वा तेजस प्राज्ञ को वा। दस श्लोकी में आया अविद्यात्मकत्वात्रयाणाम तुरीय, ये तीनों अविद्यात्मक हैं और इससे जो परे हैं वो तुरीय, वही है सर्वज्ञता के प्रतीक। तुरीय का अर्थ कर देते हैं चतुर्थ। चतुर्थ कोई अवस्था नहीं होती, लेकिन इन तीनों से हटने के लिए तुरीय का नाम लेना पड़ता है, नहीं तो फिर शून्य की आपत्ति आ जाएगी, फिर हम लोग भी बौद्ध होने लग जाएंगे। उसके लिए वहां पर तुरीय का उच्चारण करना जरूरी होता है, बाकी कोई चतुर्थ अवस्था नहीं है। तीनों अवस्थाओं से परे हो गए तो क्या हो गए? का वही आपका चतुर्थ रूप है, तुरीय रूप है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, वही विशेष रूप से जानने के योग्य है। अब समस्या कहां आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। अज्ञान की बात चल रही है, जान तो रहे लेकिन थोड़ा जान रहे हैं, तो बुद्धि का उपयोग तो हो रहा है लेकिन जिस तरह से हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए अभी हम नहीं जान पा रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान की जब जब बात शुरू होती है तो अज्ञान का लक्षण करते हुए ग्रंथकार बोलते हैं, आप लोग वेदांती हो, कभी आपकी परीक्षा होती है कि नहीं मालूम नहीं, यदि आपसे वायवा लिया जाए, मौखिक परीक्षा हो, तो अद्वैत वेदांत में अज्ञान का जो अर्थ करेंगे संप्रदाय के अनुसार सिद्धांत के अनुसार, तो आज मुझे लगता है आप लोगों की परीक्षा मैं ही ले लेता हूं।